ये इतनी कला, वो कालाचांद गीता में बड़ा सुंदर भाव है, उन्होंने देखा जगत के सौंदर्य, छोटे शिशु का सौंदर्य, मनोहर पक्षियों का सौंदर्य, पुष्पों का सौंदर्य, नक्षत्रों का सौंदर्य, सुंदर शीतल मलय तवन का सौंदर्य। सौंदर्य केवल इस रूप का अर्थ नहीं है, बुद्धि भी सुंदर होती है, मन भी सुंदर होता है, कपड़ा भी सुंदर होता है, बात भी सुंदर होती है, सब असुंदर होते हैं। तो इस सौंदर्य को देख करके उस साधक के मन में आई कि इस सारे सौंदर्य का, इस कला का जो निर्माता है, कला निपुण कलाकार, उस कलाकार को देखना है। वो कलाकार जिसकी ये कला, वो कलाकार कैसा है उसे देखना है, जिसकी तूलिका में ये जादू है, जिससे इसने इसने चित्रण किया, जिसके चित्रण का ये चमत्कार, वो चित्रकार कैसा है, उसका हृदय कैसा है, उसके नेत्र कैसे हैं, उसका मुख कैसा है, उसके चरण कैसे हैं, ये उसे देखना है। तो भगवान को देखने की अभिलाषा जागृत मन में हो गई और वो लालसा बढ़ती चली गई, अपने आप उसमें अर्पित हो जाएगा सारा का सारा, अपना जो कुछ संग्रह सामान अपने पास है, इंद्रियां मन बुद्धि, और उसमें धन्य बुद्धि होगी। धन्य बुद्धि होगी कि आज जीवन सफल हो गया, आज भगवान की बात सुनने को मिली, कहने को मिली। वो फिर दुकानदारी नहीं रहेगी जैसे हमारी हम लोगों की है, कहने सुनने की, सुनने वालों की नहीं, कहने की, और कहने की मेरी जोरों के नहीं, तो ये दुकानदारी नहीं रहेगी। फिर तो उसमें रस आए, ये जो रसानुभूति है ना, भगवत रसानुभूति, ये रसानुभूति में इतना चमत्कार है कि ये जीवन को बरबस खींच लेती है। ये रस कभी आया नहीं, जो मुझ राम लागते मीठे, तो नगरस खगरस अनरस है, वह जाते सब सीठे। अगर कहीं राम का मिठास आ गया होता तो ये सब जितने नौरस और खटरस जो हैं, ये सब फीके पड़ गए होते, नीरस अरस कुरस गुरस हो गए होते, इनमें रस नहीं रहता। इसमें रस इसीलिए है कि रसानुभूति का अभाव, वो भगवान की ओर से रस की प्राप्ति जो होती है वो अभी हमने की नहीं। राम वो कहते हैं कि राम बाण अनूप होता है, तो जिसको बुझ जाए तो ना बुझा नहीं राम का बाण अभी। गुजराती का पद है, राम बाण वाज्या हो से जाने, राम बाण वाज्या हो से जाने, राम का बाण जिसको बुझा वही जानता है राम बाण कैसा होता है। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है शंकर कुल कलंकिनी है राधा। जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है शंकर कुल कलंकिनी है राधा। राधा के लोगों ने कहा कुल कलंकिनी, तो इससे बड़ी कोई कुल को उज्ज्वल करने वाले तो हुई नहीं आज तक। जिसका सर्वस्व भगवान को समर्पित हो जाए वही तो कुल का उज्ज्वल है। लेकिन चोर जैसे, जो चोर नहीं होता उसको मूर्ख मानते हैं, उसको चोर कुल का कलंक मानते हैं, है कि नहीं ये बात। हिंद कैसे पूरे कहा प्रहलाद से कि तुम हमारे कुल में कलंक कहाँ से पैदा हो गए, तो राम को भगने वाला उस कुल का कलंक। तो भगवान को जीवन अर्पण करने वाला कुल कलंकी, उसमें अज्ञान को, मोह को, विषयों को नहीं अर्पण किया ना अपने को, इसलिए विषयी पुरुष क्या माने, उनकी बुद्धि में क्या है। पर वो माइकल कहते हैं, ये एक काव्य है बंगला में, उसका नाम है ब्रजांगना, उसके रचयिता एक ईसाई सज्जन थे माइकल मधुसूदन दत्त, बंगाली थे, ईसाई हो गए माइकल उनका नाम था ईसाईपन का, पहला नाम था मधुसूदनगर। उन्होंने एक काव्य लिखा है, उस काव्य का नाम है ब्रजांगना। इसका ये अनुवाद हिंदी में किया हुआ है। इस अनुवाद की ये दो लाइन है, जिसने देखा कभी नयन भर मोहन रूप बिना बाधा, वही जान सकता है शंकर कुल कलंकिनी है राधा। जिसने कभी मोहन के रूप को बिना बाधा के जरा सा देख लिया, वही इस बात का अनुभव कर सकता है कि कुल का परित्याग राधा के द्वारा कैसे हो गया। ये सारा कुल मान शीर लज्जा धैर्य लोक परलोक, ये सब भगवान का आवाहन होने पर ये रहता नहीं, बह जाता है। इसे छोड़ना नहीं है, छूट जाता है, इसका त्याग नहीं करना है। स्वजनमचार्य प्रथम हित्वा, छोड़ने की बात पर छूट गया, रहा नहीं, ये रह सकता नहीं, क्योंकि वो इस प्रकार की एक बड़े जोर की आंधी होती है। वो सारे वो कूड़े करकट को तमाम उड़ा के ले जाती है। एक आंधी होती है कूड़ा भर देने वाली, एक आंधी होती है कूड़े को उड़ा ले जाने वाली। तो ये जो विषया शक्ति का तूफान है, ये तमाम जगहों से इकट्ठा करके कूड़ा ला के भर देता है। और ये जो प्रेम की आंधी है भगवान की, इस सारे कूड़े कटकट को ले जा करके एक ऐसी विलक्षण आग में डाल देती है, सदा के लिए कूड़ा जल जाता। कूड़ा क्या है? ये भगवान का चरित्र, जो कुछ है सारा कूड़े कूड़ा है, सारी गंदगी गंदगी है। जिसमें भगवान नहीं, इसका नाम है दुख। दुखालय भगवान ने कहा, असुखम भगवान ने कहा। किसको कहा? जो भगवान से सहित संसार, उसको कहा। जिस जीवन ने भगवान भरा उसको कहा। वहां तो दुख ही नहीं, वहां तो दुख का आत्यंतिक अभाव है, तो सुख की आत्यंतिक स्थिति है। तो ये दुख कहाँ है जहां भगवान नहीं? तो जगत में दो ही चीज है, या जगत दुखमय है और या जगत भगवानमय है। जहां भगवान को हम नहीं देखते, वहां चाहे हम हजार सुख की सामग्री वो एकत्र कर लें, हजार सुख का हम अपने मन में संकल्प कर लें, धन से सुख मिलेगा, पुत्र से मिलेगा, स्त्री से मिलेगा, पति से मिलेगा, मकान से मिलेगा, न मालूम किस किस से सुख की संभावना का संकल्प का, और चाहे वो सब प्राप्त भी हो जाए, पर वो कड़वी तूली का चाहे दिलकुशाल बना ले, कलाकंद बना ले, उसमें हो नहीं, तो चाहे सकल उसकी कलाकंद की हो जाए, मिश्री की हो जाए, पर मुंह में लेते ही तो उल्टियां रह जाएगी। तो हम नाम चाहे कुछ भी रख लें, जो जगत प्रभु से शून्य है हमारे दिमाग में, वो जगत दुखमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां भगवान है, यहां तो सारे सुख, सारी शांति, सारा आनंद अपने आप बिना बुलाए, सूर्य के साथ प्रकाश आवेगा ही, अग्नि के साथ दहिका शक्ति आवेगी ही, अमृत के साथ अमृतत्व आवेगा ही, इसी प्रकार भगवान के साथ सुख शांति आवेगी ही। तो जगत के दो रूप हैं, या तो जगत में सुख ही सुख है, या दुख ही दुख है। ये जहाँ मिश्रण है, वहाँ का सुख ही दुख है। द्वंद्वात्मक जो है ना सुख दुख, तो वहाँ सुख जो है वो दुख के लिए रहता है, दुख की संभावना। संसार का प्रत्येक सुखी आदमी विषण रहता है, उदास रहता है, भयभीत रहता है, कहीं सुख चला न जाए, दुख आ न जाए, क्योंकि वो जानता है, ये आत्मा का अनुभव है कि ये रहने वाली चीज नहीं। आगमा का इनक भारत है, अरे सहो इसको, ये आगमा पाई है। और जिसकी आंख खुल गई, बुद्धिमान हो गया, वो तो बस ये समझता है कि दुख योनि ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनि के आद्यंतवंत कंत न तेषु रमते बोधा। बुद्धिमान आदमी इनमें रमते नहीं, प्रीत करते नहीं, दुख ही दुख है। तो क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात, भगवान की बात सुनाई, भगवान के गुण सुनाई। ये बहुत ज्यादा उपदेश की चर्चा में लाभ नहीं है, बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान की चर्चा में सब बड़ा अच्छा है, किसी का विरोध नहीं, पर माथे में अगर कोई बात समारोह में समझ में नहीं आ रहे सूक्ष्म बात, तो बेचारा क्या करे। तो सीधा काम, सीधा काम भगवान को मन में प्यारा बना ले और उस प्यारे का नाम ले जा रहा एवं प्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुरागे कैसा बढ़िया, प्यारे का नाम ले तो ही आनंद उमड़ेगा अंदर से, प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, प्यारे का नाम है ना, प्यारे का नाम बड़ा प्यारा, तो प्यारे का नाम ले तो क्या होगा, हृदय में प्रेम का उदय होगा और फिर क्या होगा, चित्त हो जाएगा द्रुत, हृदय तत्काल द्रवित हो जाएगा, फिर वो कभी जोर से हंसेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी सुसुक सुसुक कर रहेगा, कभी गायन करेगा, तो कभी उन्मत्त की भांति नाचेगा, सारे संसार की लज्जा शर्म को छोड़कर। और कौन से ब्रह्म को प्राप्त करना है फिर, जीवन में ब्रह्म नाच उठा, जगत कहीं रहा नहीं वहां पर, परम प्रियतम श्याम सुंदर ही नृत्य बनकर, गान बनकर, आंसू बनकर, रुदन बनकर, हंसी बनकर प्रकट हो गए, बस और क्या चाहिए, ये उन्माद बना रहे, ये नृत्य बना रहे निरंतर, कभी इसका विराम न हो, नहीं चाहिए शांति, नहीं चाहिए विरामावस्था, नहीं चाहिए अक्षुब्धावस्था, ये क्षोभ बना रहे, ये अशांति बनी रहे, ये नाचना कूदना कभी बंद न हो, क्योंकि ये वो नाचता उच्छलता आनंद है, उछलता हुआ आनंद, तो उछलते हुए आनंद में भी दुख लेश नहीं, और नाच का मजा अलग, मजा नाच का अलग, तो दुख तो है ही नहीं, वो चुपचाप बैठा है अपना मन है ही नहीं, तो आनंद तो सारा है, पर आनंद रूप ही हो गया तो आनंद का स्वाद तो आता नहीं, अरे मिश्री को मिश्री का क्या स्वाद आएगा, मिश्री को मिश्री का क्या स्वाद आ जाएगा, मिश्री खाने वाला अगर मिश्री बन गया तो मिश्री तो बन गया, पर मिश्री का मजा कैसे आएगा, और मिश्री भी बन जाए और अपने आप ही मिश्री को चखने वाला भी बन जाए, तो मिश्री तो बन ही गया कि कटुता तो रही नहीं उसमें, और साथ साथ खाने वाला ही बना रहा, मिश्री का ही बना रहा, तो स्वाद आएगा। तो इसलिए ये प्रेम भी गुणातीतावस्था का ही एक वर्णन है, गुणातीतावस्था प्रेम में जो होती है वो ये अयुक्तिपूर्ण भी नहीं है और कल्पना भी नहीं है, इन गुणों का भगवत प्रेमी के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है, भगवत प्रेमी का जीवन नित्य निर्मल भगवत गुणमय होता है, इसलिए वो परम पवित्र भगवान की सत्ता के चरित्र किसी अन्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए फिर मिट्टी सोना और ये पत्थर के बाद जारी होना की व्यवस्था में ये हो जाता है उसके लिए, वो मिट्टी पत्थर सोने को कुछ समझता ही नहीं, वो तो अपने भगवान के, वो तो मिट्टी को नहीं समझता, नरक को नरक नहीं मानता, वो उसके उसके नरक में भगवान खेलते हैं, भगवान को खेलना पड़ता नरक में, उसके साथ ले जाओ नरक में, तुम्हारी इच्छा वहां ले जाओ, तुम्हारी इच्छा अपने धाम में ले जाओ, नाचना तुम्हें साथ पड़ेगा, उसको न नरक नरक है, न स्वर्ग स्वर्ग है, न मोक्ष मोक्ष है, न बंधन बंधन है, अब तो बंधन मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखला ही नित नव बंधन है, मुक्त चरण से झरती है, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखरा ही नित नव बंधन है, मुक्त चरण से झरती है। हरिओम दत्त, आज जल्दी, इसलिए जल्दी है क्या, कुछ नीचे काम करना थोड़ा, हाँ दस तो जान के, तो भैया यही बात है, भगवान का नाम लेते रहो, और सारे ये प्रपंच जो हैं ये सब ऐसे ये नाम लो और उसको उनको प्रिय मानो, बस यही बात है।